आज है 24 नवंबर दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई।
शपथ दिलाने के बावजूद भी गवर्नर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि फडणवीस सरकार को बहुमत कब तक साबित करना है।
विधायकों पर लटकी दल बदल कानून की तलवार।
मेरे ख्याल से अगर बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र को शायद फिर से इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के क्या होंगे दूरगामी नतीजे।
ये खेल जो खेला है, ये बीजेपी ने खेल खेला है, इसमें सबसे बड़ा लूजर जो है बीजेपी ही है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बेहद अहम दिन है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11:30 बजे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें तीनों पार्टियों ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के शपथ ग्रहण को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। इसराइल में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल बेनी गंट्स ने अपने प्रतिद्वंद्वी और मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के सांसदों से अपील की है कि वो सरकार बनाने में उनकी मदद करें। गंट्स की ये अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब नेतन्याहू भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू जब तक दोषी करार नहीं दिए जाते उन्हें पद छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गंट्स ने उनकी पार्टी के सांसदों से कहा कि एक मजबूत सरकार बनाने के लिए उन सबको साथ आना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नेतन्याहू गृह युद्ध भड़का रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं कि इसराइल के समाज को नफरत की बीमारी से बचाने का वक्त है। ये थे इसराइल में विपक्ष के नेता बेनी गंट्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बोलीविया में नए राष्ट्रपति चुनाव की अनुमति देने वाला एक विधेयक संसद के निचले सदन में पेश होने जा रहा है। बोलीवियाई संसद का उच्च सदन इसे शनिवार को ही मंजूरी दे चुका है। इस विधेयक में सभी पार्टियों को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है सिवाय पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरोलास के। मोरोलास पर पिछले चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बोलीविया की अंतरिम राष्ट्रपति जेनीने एनियास ने मोरालस को माफी देने की सीनेट की अपील भी ठुकरा दी है। फिलहाल संसद के निचले सदन के प्रेसिडेंट सर्खियो चोके ने सांसदों से अपील की है कि वो अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को किनारे रखकर विधेयक को मंजूरी दिलाने की कोशिश करें ताकि राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में नए चुनाव कराए जा सके। मैं जानता हूं कि हम सब की कुछ पसंद नापसंद है, हमारे पास कहने को भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त ये देश अपनी संसद की ओर से जवाब का इंतजार कर रहा है और ये जवाब नया चुनाव कराकर ही दिया जा सकेगा। इसलिए मैं आप सब से तहे दिल से अपील करता हूं कि मिलकर काम करें वैसे ही जैसे सीनेट ने किया है। ये थे बोलीविया में संसद के निचले सदन के प्रेसिडेंट सर्खियो चोके। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस इराक दौरे पर हैं। उन्होंने वहां कुर्द नेताओं और अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की है। पेंस ने कहा कि भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया है, अमेरिका अपने कुर्द सहयोगियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के ट्रंप के फैसले की चौतरफा आलोचना हुई थी और कहा गया था कि वो अपने ही उन कुर्द सहयोगियों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने में उनका साथ दिया था। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि इस साल के आखिर तक चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण में पहुंचा जा सकता है। ब्रायन ने ये बातें पूर्वी कनाडा में एक सुरक्षा सम्मेलन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप प्रशासन हांगकांग और साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों से आंखें मूंदने वाला नहीं है। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन ट्रेड वॉर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। संदीप सोनी के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल जिस तरह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, उसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला।
सरकार बनाने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के कितने विधायकों के हस्ताक्षर थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन हस्ताक्षरों को रात के एक घंटे में कब और कैसे वेरीफाई किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटाने की अनुशंसा की? अन्य राजनीतिक दलों को, महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारियों को और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया, जो कि रवायत है? शपथ दिलाने के बावजूद भी गवर्नर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि फडणवीस सरकार को बहुमत कब तक साबित करना है? सवाल ये है कि लोकतंत्र का ये चीरहरण कब तक जारी रहेगा?
ये थे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उसके पुराने बयान याद दिलाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुनिए।
ये बात समझना बहुत जरूरी है। चुनाव के नतीजे आने पर ही शिवसेना किसके इशारे पर इतनी उत्तेजक हो गई? चुनाव सामने में था, नतीजे सामने आए थे। किसके इशारे पर? शरद पवार का पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। कांग्रेस का भी यही टिप्पणी रही है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। तो एकाएक ये अपोजिशन में बैठने का मैंडेट कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गया? अब कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। मतलब जब शिवसेना स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपने 30 साल की दोस्ती तोड़ दे और घोर विरोधी उनके विचारधारा के एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम ले तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है।
तो जैसा कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कह रहे थे, सवाल कई हैं। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका संवैधानिक थी या नहीं, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलाई गई वो तरीका सही था या नहीं, तमाम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होंगे जब 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। वक्त तय हुआ है आज सुबह 11:30 बजे। इस बीच बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संपर्क शायद उनसे हो नहीं पाया है, उससे पहले कोशिश करते हैं दोबारा और पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक क्या दावा कर रहे हैं।
शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की संख्या और हमारे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनकी संख्या और छोटे दलों की संख्या मिलाकर ये संख्या के आधार पे जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, विधायकों की शपथ होगी और स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर के चुनाव में ही सरकार को हम परास्त करने का काम करेंगे।
ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक। और इस बीच बीबीसी मराठी सेवा के मेरे सहयोगी गुलशन स्टूडियो में आ चुके हैं। गुलशन, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीती रात मुंबई में काफ़ी हलचल रही होगी।
काफ़ी तनाव रहा है दरअसल, मतलब दिन भर जो हलचल हुई है उससे कोई भी शाम को या रात को शांति से सोया होगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। रात भर एक जो फील्डिंग है, जो भी अभी गट हो चुके हैं उनकी फील्डिंग रात भर चली होगी। एक तरफ एनसीपी और शिवसेना मिलकर अपने अपने एमएलए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी भी एनसीपी के कुछ एमएलए गायब होने की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो कल रात को भी ये आलम ऐसा था कि शिवसेना खुद जाकर एनसीपी के एमएलएस ढूंढ कर ला रही थी एयरपोर्ट के पास से। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मयूरेश, उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के पास के एक होटल से एनसीपी के एमएलए को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वहां से निकाल कर लेकर आए। तो इस तरह अभी शिवसेना और एनसीपी मिलकर एक बहुत टाइट फील्डिंग लगा के रखी हुई है उन्होंने।
गुलशन, ये बताइए कि बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक अजीत पवार के साथ हैं, उनकी संख्या के बारे में पक्के तौर पर कुछ पता चल पाया है?
कल रात का जो हेडकाउंट लिया जा रहा था उसमें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जहां तक ये एक जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार प्लस 4 ऐसा एक तकरीबन फिगर फिलहाल चल रहा है।
गुलशन, विधायकों की, निर्दलीय विधायकों की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में अब काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए ये अभी एक डिसिसिव फिगर होगा बीजेपी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल का जो एक लाइक ट्विस्ट ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है उसके बाद अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए अगर वो अजीत पवार के जो गुट में से 4-5 लोग आ जाते हैं, उसके अलावा उनके खुद के तकरीबन 105-106 है, उनका टोटल फिगर अगर 115-120 के आसपास भी जाता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर भी शायद वो जो मैजिक नंबर है वो शायद क्रॉस करने में उनको दिक्कत होगी।
गुलशन, आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहिए, आगे कार्यक्रम में हम श्रोताओं को सुनवाएंगे मराठी भाषा के अखबार, मुंबई से छपने वाले अखबार और महाराष्ट्र में बाकी जगहों से छपने वाले अखबार आज क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में विपक्ष बार बार भारतीय संविधान का हवाला दे रहा है और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। राज्यपाल और संविधान की इसी भूमिका के बारे में बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने संविधान के जानकार उल्लास बापट से बात की।
अभी इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कुछ, क्योंकि राज्यपाल को वैसा अधिकार है, वो कभी भी बुला सकते हैं और उनको देखना चाहिए कि जो चीफ मिनिस्टर हो रहा है उसको विधानसभा में बहुमत है या नहीं, मेजॉरिटी है या नहीं। अगर वो नहीं बहुमत प्राप्त कर सके तो रेजिग्नेशन देना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगा और उसमें फिर से राष्ट्रपति राजवट लागू करना पड़ेगा, महाराष्ट्र को शायद फिर से इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये सब जनता के साथ एक तरह का बेईमानी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है।
एक सवाल और जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी या हटाने के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है, तो ये जो रात भर में ही कैबिनेट की मंजूरी ले ली गई वो किस तरीके से ले ली गई होगी, उस बारे में आप क्या बता सकते हैं?
एक बात बराबर है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं उसके लिए देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ऐसा वर्डिंग है 74 आर्टिकल का। कोई भी निर्णय जब राष्ट्रपति लेते हैं तो उनको पंतप्रधान साहब बोलते हैं। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे कि कैबिनेट का ये निर्णय है हमारा और कैबिनेट का कोई भी मंत्री इसको विरोध नहीं करेगा।
एक बात और उठाई जा रही है कि जो बहुमत के जो आंकड़ा दिखाया गया होगा रात के वक्त गवर्नर के सामने, उसमें जो हस्ताक्षर है तमाम विधायकों के, उसमें भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ जो हेर फेर है। शरद पवार, उन्होंने सामने दिखाया मीडिया के, उन्होंने कहा कि हमें जो है गलत तरीके से लेकर के गए। हाँ। गवर्नर के सामने ये सब चीजें, क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है क्या?
ये राज्यपाल जो है वो डिसाइड करेंगे ना, तो राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन का भाग है, उन्होंने देखना चाहिए कि ये उनको, वो बोल सकते थे कि उनको लाइए, सिग्नेचर नहीं चलेगा, सब मेंबर्स मेरे सामने हाजिर करिए, लेकिन वो ऐसा नहीं बोला है उन्होंने। तो यहाँ कहा राज्यपाल का रोल जो है वो भी संशयास्पद हो गया है।
ये थे संविधान के जानकार उल्लास बापट, और वो भी कुछ जवाब देते देते सवाल पीछे छोड़ गए हैं। गुलशन स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी मराठी सेवा के हमारे सहयोगी। गुलशन, महाराष्ट्र से छपने वाले मराठी भाषा के समाचार पत्र आज क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं?
आज के अखबार देखना एक्चुअली इंटरेस्टिंग मामला था, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि क्या आज का, क्योंकि कल के अखबार तो एक घंटे में ही पुराने हो चुके थे कल की खबरों की वजह से, तो इसलिए आज के अखबारों में सबने एक बात जो स्पष्ट रूप से कही है वो है अजीत पवार से बंड, जिसका मतलब है उनकी बगावत। और सबने यही कहा है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सबने उसका जिक्र किया है कि कैसे अभी एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की जो आघाड़ी है वो भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं।
गुलशन, अखबारों के नाम भी बताते चलें।
लोकमत रविवार है मेरे सामने फिलहाल, महाराष्ट्र टाइम्स है और लोकसत्ता है। इन सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी जो देखने मिले, लोकसत्ता ने बहुत एक अच्छा वर्ड यूज़ किया है, सत्ता सिंचना सा नवा प्रयोग। दरअसल कुछ साल पहले जब एक सिंचन घोटाला मतलब इरिगेशन स्कैम का पता चला था, तो उस मामले में देवेंद्र फडणवीस एक तरफ थे और अजीत पवार एक तरफ थे, और उसी एक पर्टिकुलर टर्म का लोकसत्ता ने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया हुआ है। मैं खास तौर पर ध्यान जो लेना चाहूँगा आपका वो है सामना की तरफ, जो कि शिवसेना का माउथपीस माना जाता है, और उन्होंने भी उनके मास्टहेड के ऊपर लिखा हुआ है सामना में, काला दिवस भाजपा चोरून शपथ विधि, मतलब काला दिन है आज का, भाजपा ने सबसे चुरा के आज का जो शपथ विधि है वो किया हुआ है। इसके इंटरेस्टिंग है कि पूरा फ्रंट पेज उनका भरा हुआ है, और सबसे नीचे एक कोने में ऐड है एक डिटर्जेंट का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कठिन दाग काढून टाकते, मतलब जो आपके दाग है जो चिपचिपे दाग है वो दाग भी निकाल देता है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी मतलब बहुत अच्छे से कुछ खेला गया है, शायद वो कोइंसिडेंटल है लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत शुक्रिया। गुलशन बता रहे थे मराठी के अखबारों में आज क्या कुछ छपा है, और दिल्ली से छपने वाले हिंदी अंग्रेजी के अखबारों पर नज़र दौड़ाई है मेरी सहयोगी सिंधु वासनी ने। सिंधु बताएं।
संदीप, महाराष्ट्र में कल जो उलट फेर हुआ उसे अखबारों ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से पेश किया है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है व्हाइल यू वर स्लीपिंग, यानी जब आप सो रहे थे तब ये सब हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में इसी विषय पर उन्नी का बनाया एक कार्टून भी है। कार्टून में देवेंद्र फडणवीस को टूथब्रश लिए और शॉर्ट्स पहने राजभवन की ओर जाते हुए दिखाया गया है, यानी सुबह तड़के जो शपथ ली गई उस ओर इशारा किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग भी काफ़ी मज़ेदार है। अखबार लिखता है द रियल डे नाइट टेस्ट इज इन मुंबई, यानी क्रिकेट वाला डे नाइट टेस्ट मैच तो कोलकाता में हुआ लेकिन असली डे नाइट टेस्ट मुंबई में हुआ। दैनिक जागरण ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग दी है महाउलटफेर। दैनिक भास्कर का शीर्षक भी काफ़ी रचनात्मक है। दैनिक भास्कर ने लिखा है पवारफुल पॉलिटिक्स, पवार को पावर से जोड़ते हुए। और हिंदुस्तान मेरे सामने है, हिंदुस्तान ने लिखा है महाराष्ट्र में पल में तोला पल में माशा महाउलटफेर। एक और अखबार की हेडिंग का जिक्र करना चाहूंगी जो दिल्ली से नहीं बल्कि कोलकाता से प्रकाशित होता है। द टेलीग्राफ ने लिखा है वी द इडियट्स।
बहुत शुक्रिया सिंधु। और आइए अब आपको बताते हैं दल बदल कानून क्या है और महाराष्ट्र के मामले में ये कानून किस तरह अपना असर दिखा सकता है। जानकारी दे रही हैं सिंधु वासनी।
दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। साल 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आया राम गया राम वाला मुहावरा खूब प्रचलित हुआ करता था। दरअसल वर्ष 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद आया राम गया राम मुहावरा प्रचलित हो गया। लेकिन साल 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर आई। साल 1985 में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये संविधान में 52वां संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें ये भी बताया गया कि दल बदल के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है या कोई सदस्य पार्टी व्हिप के बावजूद वोट नहीं करता है तो दल बदल कानून के हिसाब से उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहें तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। साल 2003 में इस कानून में संशोधन भी किया गया। जब ये कानून बना तो प्रावधान ये था कि अगर किसी पार्टी में बंटवारा होता है और 1/3 विधायक एक नया ग्रुप बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर दल बदल हुए और ऐसा महसूस किया गया कि पार्टी में टूट के प्रावधान का फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। इसके बाद संविधान में संशोधन करके व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। लेकिन विधायक कुछ परिस्थितियों में अपनी सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं, जैसे कि अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में ना तो दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और न ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मामले में एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। अगर अजीत पवार 36 विधायकों का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें 36 विधायकों का समर्थन नहीं मिला तो उनकी सदस्यता जा सकती है।
दल बदल कानून के संदर्भ में जानकारी दे रही थी सिंधुवासनी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। किस पार्टी और किस नेता पर इसकी गाज ज्यादा गिरेगी, बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा।
महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार एक लंबा दिन था। इस दिन देश ने राजनीति का जो खेल देखा वो पहले नहीं देखा था। शुक्रवार शाम को शिवसेना के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार सुबह सुबह भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए।
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस,
मी अजीत अनंतराव पवार।
महाराष्ट्र की राजनीति की बिसात पर अजीत पवार की इस चाल ने सबको चौंका दिया, उन्हें भी जो उन्हें बेहद करीब से जानते हैं। शाम होते होते ये बाजी बदली नजर आई। अजीत पवार को राजभवन में शपथ लेते देखने वाले एनसीपी के कई विधायक पार्टी नेता शरद पवार के साथ नजर आए और सत्ता के खेल के समीकरण एक बार फिर बदल गए। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद चांचुवार को लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान में शायद देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे।
अभी तो लगता है कि देवेंद्र फडणवीस विल बी द बिगेस्ट लूजर। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों ने अपने विधायकों को अपने साथ रखा है और सेकंड लूजर हो गए अजीत पवार, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने अपने चाहता के साथ बगावत की है और एनसीपी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है, उससे उनकी प्रतिमा को बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा है। और जिस तरीके से उनको पवार साहब के वारिस के रूप में देखा जा रहा था, देवेंद्र फडणवीस को इसका खामियाजा और बीजेपी को भी खामियाजा इसका बड़ी संख्या में भुगतना पड़ सकता है आने वाली चुनावों में।
देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है लेकिन उनके कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स मानते हैं कि इन इम्तिहानों में बीजेपी के फेल होने की संभावना ज्यादा है।
25 तारीख से वो एमएलए को शपथ दिलाने वाले हैं। एमएलए के शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का मसला आएगा और अगर बीजेपी को लगा कि हमारा विधानसभा अध्यक्ष नहीं बैठ सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हाउस में बहुत गड़बड़ करेंगे और उस गड़बड़ी के दौरान में हाउस एडजर्न हो जाएगा और बिना ही अध्यक्ष के चुनाव के फिर से राष्ट्रपति शासन की ओर राज्य जा सकता है या वो फिर मध्यावधि चुनाव भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन था उस सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट किया है राज्यपाल ने, तो अभी कोई चारा नहीं है। लेकिन ये खेल जो खेला है ये बीजेपी ने खेल खेला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा लूजर जो है वो ना तो एनसीपी है, ना तो कांग्रेस है, ना तो शिवसेना है, सबसे बड़ा लूजर बीजेपी ही है।
प्रमोद चांचुवार कहते हैं कि अगले दिनों में कौन विधायक किसके साथ रहेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है।
कि जब अजीत पवार जो नेता है वही छोड़ के जा सकते हैं एनसीपी को, तो हम आने वाले दिनों में कौन विधायक किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन जहां तक देखा जाए पब्लिक परसेप्शन और प्रेशर जो है उससे वो इलेक्टेड लेजिस्लेटर प्रेशर तो है कि वो अभी बीजेपी के साथ ना जाए।
अगर देवेंद्र फडणवीस बहुमत नहीं साबित कर पाए और महाराष्ट्र मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ा तो फिर कौन नुकसान में रहेगा? समर खड़स कहते हैं,
ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायी चित्र होगा। ये अगर कॉम्बिनेशन चुनाव में जाता है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, उसमें कांग्रेस को कई दिक्कतें आएंगी क्योंकि कांग्रेस जो है वो ऑन पेपर सेक्युलरिज्म के बारे में बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पार्टी है, तो वो कितनी साथ आएगी पता नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर एनसीपी और शिवसेना ये कॉम्बिनेशन अगर चुनाव में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
विश्लेषकों के नजरिए अपनी जगह हैं लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के खेल में जितने पत्ते खुले हैं उनसे ज्यादा बंद हैं। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
आज रविवार है और हर रविवार आप सुनते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने, सुनिए आदर्श राठौड़ की जुबानी।
इस हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में नवाज शरीफ का इलाज के लिए लंदन जाने और सीपैक से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात नवाज शरीफ की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग नून के नेता नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए हैं लेकिन उनके लंदन जाने पर पाकिस्तान में खूब सियासत हो रही है। अखबार दुनिया के मुताबिक इमरान खान ने उनकी बीमारी और मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही सवाल उठा दिए हैं। اخبار جنگ نے لکھا ہے کہ عمران پوچھ رہے ہیں کہ انہیں تو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے، پھر مریض کیا ہوائی جہاز کو دیکھ کر ٹھیک ہو گیا یا لندن کی ہوا لگنے سے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ عمران خان کے اس بیان کا مسلم لیگ نون نے جم کر جواب دیا۔ اخبار ایکسپریس کے مطابق مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ سیاسی بدلہ لینے کے چکر میں پردھان منتری عمران خان دماغی مریض بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چین پاکستان آرتھک کوریڈور سی پیک کو لے کر پاکستان اور امریکہ میں مت بھید ہو گئے ہیں۔ اخبار جنگ نے سرخی لگائی ہے، سی پیک پر پاکستان امریکہ آمنے سامنے، امریکہ نے کہا پاکستانی ارتھ ویوستھا پر بوجھ، چین کو فائدہ۔ اخبار جنگ کے انوسار دکشن ایشیا معاملوں کی امریکی اپ ودیش منتری ایلس ویلز نے کہا کہ سی پیک سے چین کو فائدہ پہنچے گا لیکن اس سے پاکستانی ارتھ ویوستھا کو نقصان ہوگا۔ چین نے امریکہ کے ان آروپوں کو خارج کر دیا ہے۔ پاکستان میں چینی راجدوت زاؤ جنگ نے کہا کہ جانکاری نہیں ہو تو بھرشٹاچار کی بات کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ چینی راجدوت نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ضرورت پڑی تو قرض واپس نہیں مانگیں گے۔ سی پیک کے تحت چین نے پاکستان میں 46 ارب ڈالر کے نویش کا سمجھوتا کیا ہے۔ بھارت پرشاست کشمیر سے جڑی خبریں اب اس طرح سے سرخیاں نہیں بٹور رہی ہیں جتنی پہلے بٹورا کرتی تھیں، لیکن ابھی بھی اس سے جڑی کوئی نہ کوئی خبر پاکستان کے اخباروں میں ضرور رہتی ہے۔ اخبار دنیا کے انوسار کشمیر میں کتھت بھارتی ظلم کے خلاف امریکی سنسد میں بل پیش۔
پاکستان سے چھپنے والے اردو اخباروں کی ساپتاہک سمیکشا کے بعد کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ کھیلے جا رہے ایتیہاسک ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے ہی دن بھارت کو جیت کی خوشبو آنے لگی ہے۔ گلابی گیند کے خلاف بنگلہ دیشی بلے بازوں کا سنگھرش دوسری پاری میں بھی جاری ہے، اور جب کل کا کھیل سماپت ہوا تب اس کا اسکور 6 وکٹ کھو کر 152 رن تھا۔ بنگلہ دیش کے مشفق الرحیم 69 رن بنا کر ناباد تھے، جبکہ محمود اللہ 39 رن بنا کر ریٹائر ہرٹ ہوئے۔ بھارت کے ایشانت شرما نے قہر برپاتے ہوئے 39 رن دے کر 4 اور امیش یادو نے 40 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس سے پہلے بھارت کی پہلی پاری 347 رن پر سماپت ہوئی اور اسے پہلی پاری کے آدھار پر 241 رنوں کی بڑھت ملی۔ کپتان ویراٹ کوہلی نے جم کر کھیلتے ہوئے 136، چیتیشور پجارا نے 55 اور اجنکیہ رہانے نے 51 رن بنائے۔ اس ٹیسٹ میچ میں ابھی تک 9 وکٹ جھٹک چکے تیز گیند باز ایشانت شرما نے اپنی کامیابی پر کہا،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ 2 سال میں میں نے کافی وکٹ لی، تو 2 سال میں انڈیا میں ہم ابھی تک کی دوسری سیریز کھیل رہے ہیں، اس سے پہلی ساری ہم نے باہر کھیلی، تو میں بس وہی فارم کنٹینیو کرنا چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے پلس پوائنٹ تھے کہ جب میں باہر وکٹ لے سکتا ہوں تو انڈیا میں کیوں لے سکتا۔
بنگلہ دیش کو پاری کی ہار سے بچنے کے لیے ابھی بھی 89 رنوں کی ضرورت ہے اور اس کے 4 وکٹ باقی ہیں۔ ادھر آسٹریلیا نے برسبین میں پاکستان کے ورودھ کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے۔ کل جب تیسرے دن کا کھیل سماپت ہوا تب پاکستان نے اپنی دوسری پاری میں 3 وکٹ کھو کر 64 رن بنائے تھے۔ اسٹمپ کے سمے شان مسعود 27 اور بابر اعظم 20 رن بنا کر ناباد تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کی پہلی پاری 580 رن پر سماپت ہوئی۔ مارنس لبوشینک نے 185 اور ڈیوڈ وارنر نے 154 رنوں کی پاری کھیلی۔ پاکستان کے یاسر شاہ نے 205 رن دے کر 4، شاہین افریدی نے 96 رن دے کر 2 اور حارث سہیل نے بھی 75 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ پہلی پاری کے آدھار پر آسٹریلیا کو 340 رنوں کی وشال بڑھت ملی۔ پاری کی ہار سے بچنے کے لیے پاکستان کو ابھی بھی 276 رنوں کی ضرورت ہے اور اس کے 7 وکٹ باقی ہیں۔
اور چلتے چلتے مکھیہ سماچار پناہ سندھو واسنی سے۔
بی بی سی سماچار۔ بھارتی سپریم کورٹ آج 11:30 شیو سینا، کانگریس اور این سی پی کی اس یاچکا پر سنوائی کرے گا جس میں تینوں پارٹیوں نے دیویندر فڑنویس اور اجیت پوار کے شپتھ گرہن کو اسمویدھانک بتاتے ہوئے چنوتی دی ہے۔ اسرائیل میں پردھان منتری پد کی دوڑ میں شامل بینی گنٹس نے اپنے پرتیدوندی اور موجودہ پردھان منتری بنیامین نتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی کے سانسدوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکار بنانے میں ان کی مدد کریں۔ بولیویا میں نئے راشٹرپتی چناؤ کی انومتی دینے والا ایک ودھیک سنسد کے نچلے سدن میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ سنسد کا اچ سدن اسے پہلے ہی منظوری دے چکا ہے۔ فرانس کی راجدھانی پیرس میں گھریلو ہنسا کے خلاف وشال جن پردرشن ہو رہا ہے۔ فرانس بھیانک روپ سے گھریلو ہنسا کی سمسیا سے جوجھ رہا ہے۔ ایک انومان کے مطابق یہاں ہر تیسرے دن ایک مہیلا کی ہتیا اس کے پارٹنر کے ہاتھوں کر دی جاتی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।